તારીખ 6/9/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 567 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 503
વચનામૃત પત્ર 567 હિન્દી મેં પેજ નંબર 458 451 ગુજરાતીમાં 451 નું પાનું છે. પત્ર 569 માં દો પેરેગ્રાફ હોય હે, સંક્ષેપ મેં લેને કે સંસાર કે સર્વ પ્રકાર કે દુઃખ સે ઓર ક્લેશ સે મુક્ત હોને કા ઉપાય, છૂટને કા ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન હૈ. ઓર વો આત્મજ્ઞાન જિસકો આત્મકલ્યાણ કા વિચાર હોતા હૈ ઉનકો હી પ્રાપ્ત હોતા હૈ. આત્મકલ્યાણ કો છોડ કરકે કોઈ દૂસરી વાંછા હો, તો ધર્મ કા કોઈ ભી સાધન કરે ઉનકો આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી. ઓર આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી તો કિસી કી પ્રકાર કે દુઃખ સે મુક્તિ ભી નહીં હોતી. એસા આત્મજ્ઞાન આત્મકલ્યાણ કે વિચાર સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ. ઓર આત્મકલ્યાણ કા વિચાર સત્સંગ સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ, યે કહેને કા અભિપ્રાય હૈ. થોડા બહોત આત્મકલ્યાણ કા વિચાર હો ઓર ધર્મ કે ક્ષેત્ર મે પ્રવેશ ભી હો થોડા બહોત, ફિર ભી જો અસત્સંગ ઓર અસત પ્રસંગ જીવ કો રાહ કરતા હો તો આત્મકલ્યાણ કા વિચાર હોને પર ભી વિચાર બલ નહીં હોગા. વિચાર હોતા હૈ ઓર વિચાર બલ નહીં હોતા હૈ તો વો વિચાર સાર્થક નહીં હોતા હૈ. આત્મકલ્યાણ કા વિચાર સાર્થક નહીં હોતા હૈ. ઇસલિયે અસત પ્રસંગ ઓર અસત્સંગ કમ કર દેના ચાહીએ ઓર ઉસકો મિટાને કે લિયે આરંભ ઓર પરિગ્રહ કી અલ્પતા કરના ભી જરૂરી હોતી હૈ. અસત્સંગ કા બલ ઘટને સે આત્મવિચાર વિશેષ રૂપ સે હોને કા અવકાશ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઓર આત્મવિચાર હોને સે આત્મજ્ઞાન હોયગા. આત્મકલ્યાણ કા વિચાર ઓર વિચાર બલ પ્રબળ હોને સે આત્મજ્ઞાન હોગા. યે બાત અપને કો યહાં તક કલ કે સ્વાધ્યાય મેં આયે થે કે આત્મવિચાર હોને સે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ. આત્મવિચાર કા અવકાશ ઓર સત્સંગ કા બલ ઘટને સે ઓર સત્સંગ કા બલ બઢને સે આત્મકલ્યાણ કા વિચાર બલવાન હોતા હૈ. ઓર જિસકો આત્મવિચાર કા બલવાન પ્રકાર હોતા હૈ ઉનકો આત્મજ્ઞાન હોતા હૈ. સત્સંગ મેં આત્મકલ્યાણ કી ભાવના વિશેષ રૂપ સે બઢતી હૈ. વહી એક એસા પ્રસંગ હૈ, બહાર મેં એક હી એસા પ્રસંગ હૈ કે સત્સંગ મેં હી આત્મકલ્યાણ કા વિચાર હોતા હૈ ઓર બલવાન વિચાર હોતા હૈ. યાને આત્મકલ્યાણ કી ભાવના ઓર રુચિ કો પુષ્ટિ મિલતી હૈ, પોષણ મિલતા હૈ. યે એક હી એસા પ્રસંગ પ્રકાર હૈ, ઇસકો સત્સંગ કા બલ કહેતે હૈ. ભાવના બઢતી હૈ તો સત્સંગ કા બલ બોલને મેં આતા હૈ. ઓર ઇસસે એસે આત્મવિચાર સે આત્મજ્ઞાન હોતા હૈ ઓર આત્મજ્ઞાન સે નિજ સ્વભાવ સ્વરૂપ મોક્ષ કૈસા હોતા હૈ કે આત્મજ્ઞાન કા ફલ સ્વરૂપ જો મોક્ષ હૈ વો નિજ સ્વભાવ સ્વરૂપ હૈ. જૈસા અપના મૂળ સ્વભાવ હૈ વૈસી દશા હોના ઇસકો મોક્ષ કહેને મેં આતા હૈ. तो आत्मज्ञान के फल में निज स्वभाव स्वरूप सर्व क्लेश एवं सर्व दुख से रहित मोक्ष कैसा है कि एक तो निज स्वभाव स्वरूप है वो अस्थि से कहा, और सर्व प्रकार के दुख और सर्व प्रकार के क्लेश से रहित है, ऐसा जो मोक्ष है वो प्राप्त होता है, वो बात सर्वथा सत्य है, किंचित सत्य है ऐसा नहीं है, वो बात सर्वथा सत्य है। जिसको आत्मज्ञान होगा उसको मोक्ष होगा, होगा और होगा ही, वो नियमबद्ध है। और सत्संग और सत्संग के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझाओ विस्तार से। हाँ, थोड़ा वो बात लेने का विचार था कि संघ के चार भेद हैं। जो ज्ञानी पुरुष का संघ है उसको परम सत्संग कहने में आता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का संघ वो आत्मा को, मुमुक्षु के आत्मा को परम कल्याणकारी है, इसलिए वो परम सत्संग कहने में आता है। फिर उत्कृष्ट मुमुक्षु का जो संग है उसको सत्संग कहने में आता है। इसके सिवा जो भी संसार के मनुष्यों के संग है वो असत्संग कहने में आता है। संसार के मनुष्यों में भी जो अवगुणी हो, अवगुणी हो मतलब कि जो देव गुरु शास्त्र का विरोध करने वाला हो, सत्पुरुष का विरोध करने वाला हो, अब सिद्धांत को स्थापित करने वाला हो, और अनेक प्रकार के गुनाहित प्रवृत्ति के व्यवसाय वाला हो, बहुत रंग राग में चढ़े हुए हो, व्यसनी हो, ऐसे जीवों का संग उनको कुसंग कहने में आता है। और सत्संग में भी एक कुसंग है, वो कुसंग कभी भी करने लायक नहीं है। शास्त्रों में जितनी सत्संग की महिमा बखानी है उतना ही कुसंग की निंदा की है। ठीक है, सत्शास्त्रों में सत्संग की जितनी प्रशंसा किया है उतना ही सत्शास्त्रों में कुसंग की निंदा की है। ऐसी ऐसी निंदा की है कि कुसंग से छूटने के लिए जहर खाना पड़े तो खा लेना, और आग में जलना पड़े तो जलना, पानी में डूबना पड़े तो डूब जाना, सर्प से संग कर लेना लेकिन कुसंग नहीं करना, क्योंकि सर्प काटेगा तो तुम एक दफे मरोगे, कुसंग से तो अनंत जन्म मरण हो जाएगा। और देव गुरु शास्त्र और ज्ञानी पुरुष का विरोध भी कौन करते हैं? आम जनता नहीं करती है, वो धर्म के क्षेत्र में ही ऐसा विरोध होता है। कहाँ होता है? धर्म के क्षेत्र में जब राग द्वेष बढ़ जाता है तब ज्ञानियों का भी विरोध होता है। तो ऐसे ऐसे जीवों का संग करना कोई भी कारण से, उसमें कुसंग होता है और अनंत जन्म मरण जीव का बढ़ता है। इसलिए संग करने में कहाँ हमको कितना जोखिम है, कितनी भयंकर जवाबदारी है, वो बात भी समझना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत बात आती है, एक दफे मरना अच्छा है, अनंत जन्म मरण बढ़ाना अच्छा नहीं है। तो सत्संग और असत्संग में फर्क वो है कि जो मुमुक्षु है और सिर्फ आत्मकल्याण के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं, आत्मकल्याण में आगे बढ़ने के लिए उनका संग करना वो सत्संग है, और ज्ञानी पुरुष का संग मिले तो परम सत्संग है। इसके सिवा जो भी संग है वो असत्संग है, चाहे कुटुंबी जनों का हो, चाहे समाज के या जगत के किसी भी जन मनुष्यों का हो, सब असत्संग में जाता है, सत्संग नहीं है। उतना फर्क है, सत्संग और असत्संग के बीच में इतना फर्क है। कुसंग तो बहुत भयंकर है, कुसंग से तो 100 गांव दूर रहना, उससे तो बहुत चेत के रहना पड़ेगा। हाँ, परमानंद चिंतामणि में बहुत से अलग अलग शास्त्रों में से वो बात बहुत लिया है। अपने यहाँ है परमागम चिंतामणि, कुसंग के कितने बोल हैं? 993, 1270, 1524, 1620, 1682 और 1756, 6 बोल हैं। अभी 1270 जो पहले हाथ में आ गया वो लेने, जैसे लोहा का संग करने से अग्नि भी बड़े बड़े घन, क्या कहते हैं, थोड़ा बड़े पीटने में आता है, वैसे दुष्ट जनों के संग से भले अच्छे पुरुषों का गुण भी नष्ट हो जाता है। दुष्ट जनों से संग से अच्छे लोग भी नुकसान में उतने आते हैं कि उसके गुण भी नष्ट हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। कोई मुमुक्षु थोड़ा आगे बढ़ता है फिर भी उसको दुष्ट जनों का संग रहता है तो उनका बहुत ही परिणाम बिगड़ जाता है, ऐसा बनता है। कभी हो जाता है कोई कारणवशात अगर दुष्ट जन का संग होता है और उसका फल कितना खराब है वो मालूम नहीं होता है, तो कभी ऐसा बनता है। ऐसा कोई ऐसा मानो कि कोई प्रशंसक मिल गया, दुष्ट जन भी कोई प्रशंसक मिल गया, पर प्रशंसा अच्छी लगती है तो क्या करें, तो जो अच्छा है वो भी बुरा हो जाएगा, उसके परिणाम भी बिगड़ जाएंगे। ऐसा कोई ना कोई कारण से दुष्ट जन का संग रहता है तो उसका नुकसान हुए बिना नहीं रहता। अभिप्राय बदल जाए तो अपने को संग छोड़ देना चाहिए, सीधी सादी बात है। संग हाँ कुसंग हो जाएगा, संग छोड़ देना चाहिए। हाँ, सबको को परोक्ष करे के प्रत्यक्ष करे, जो विरोध करता है उसका संग किसी हालत में करना नहीं चाहिए, किसी हालत में नहीं करना चाहिए। एक और है, जिस संसार में अनेक उपायों से पालन पोषण करके बढ़ाई हुई भी यह अपनी देह भी अपनी नहीं होती है, वहाँ अपने पूर्व में बांधे हुए कर्मों के वश पड़े हुए स्त्री पुत्र मित्र पुत्री जमाई व पिता आदि के बिल्कुल जुदे पदार्थ किन जीवों के अपने प्रकट पने हो सकते हैं, ऐसा जान करके बुद्धिमान मानव को 1524 को लिखने में फर्क पड़ा है, तो कुछ शंका बोल नहीं है। सत्रह सौ छप्पन वाला तो है ही। बाघ व्याघ्र होता है जंगल में, दुष्ट हाथी और सर्पों के संयोग से भय को उत्पन्न करने वाले वन में रहना अच्छा है। सर्प के वन में रहना पड़े, हाथी के बाघ के पास रहना पड़े तो रह जाना। प्रलयकालीन वायु से उठती हुई भयानक तरंगों से व्याप्त समुद्र में डूब जाना भी अच्छा है। कुसंग से क्या क्या अच्छा है कि भयंकर समुद्र में डूबना भी अच्छा है, और समस्त संसार को जलाने वाली ज्वालायुक्त अग्नि की शरण में जाना भी बहुत अच्छा है। परंतु तीनों लोक के बीच में रहने वाले समस्त दोषों के जनक दुर्जनों के मध्य में रहना अच्छा नहीं है। दुर्जनों के मध्य में रहना अच्छा हाँ, सबसे ये अमित गति आचार्य सुभाषित रत्न संदो में से लिया है। एक मृत्यु, क्योंकि ये सब एक मृत्यु का कारण है, और ये दुष्ट जनों का संग है वो अनंत जन्म मरण को बढ़ाने वाला है। इसलिए सब शास्त्रों में कुसंग की निंदा बहुत की है, कुसंग की निंदा बहुत की। जितनी सत्संग की प्रशंसा की है बराबर उतनी ही कुसंग की निंदा की है। जो जीव, अब आगे लेते हैं, मोह निंद्रा में सोए हुए हैं वे अमुनि हैं। चाहे दीक्षा धारण की हो और समाज में मुनि पद से जाने माने हो, लेकिन जिसको दर्शन हो कि निंद्रा है, निंद्रा में जीव को निंद्रा इसलिए कहते हैं कि निंद्रा में जो सो जाता है उनको खुद का अपना भान रहता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ सोया हुआ हूँ, कैसे सोया हुआ हूँ, कुछ पता नहीं चलता। वैसे जो मोह निंद्रा में है वो अपने स्वरूप को भुला हुआ है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, उसका भान उसको नहीं है। तो चाहे जितना भी त्यागी हो वो अमुनि है। निरंतर आत्मविचार पूर्वक मुनि तो जागृत रहते हैं, जो भी आत्मकल्याण के विचार में जागृत है वही मुनि है, उसको मुनि बोल दिया। ये मुनि का लक्षण बोला, जो आत्मविचार में जागृत होते हैं। प्रमादी को सर्वथा भय है, जिसको स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं चलता और संसार के कार्य में इधर उधर जो लगा रहता है उनको सर्वथा भय है। क्यों? कि उसके वो कहाँ किधर दुर्गति में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रमादी को सर्वथा भय है, अप्रमादी को किसी तरह से भय नहीं है। और जो स्वरूप में पुरुषार्थ करने के लिए अप्रमादी है, मैंने जागृत है सतत, रात को भी वही विचार आता है, दिन को भी वही विचार आता है कि मुझे मेरा आत्मकल्याण जैसे कैसे भी कर लेना है, ऐसा जो अप्रमादी है उनको कोई भय नहीं है। क्यों? कि उनको दुर्गति होने वाली नहीं है, इसलिए उसको भय नहीं है। ऐसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है, ये बात तो जिनेन्द्र ने कही हुई है, माने गारंटेड बात है। ये कोई मामूली व्यक्ति ने ये बात नहीं बोली है, ये तो सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ ने वो बात कही है। ये बात तो त्रिलोकनाथ ने कही है। वो त्रिलोकनाथ ने जो बात कही ना, उसमें वो प्रसंग याद आया। महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान ने गुरुदेव के विषय में त्रिलोकनाथ ने वो बात कही थी कि ये फतेह कुमार आगे जाके तीर्थंकर होने वाले हैं। तो वेंस ने तो वो बात की प्रशंसा करते हुए ऐसा बोलते थे कि गुरुदेव को महाविदेह के सिमंदर भगवान के समोसरण में सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा परमेश्वर ने तिलक किया था। जैसे किसी को राजगादी पर बैठाते हैं तो तिलक करते ना, ऐसे गुरुदेव को तिलक किया, ये तीर्थंकर हो जाएगा, ये तीर्थंकर होने वाला है। तो ये जो सर्वज्ञ भगवान ने सिमंदर भगवान ने जिसको तिलक किया, हाँ, उसकी अनुमोदना करना या इसका विरोध करना, क्या करना है? इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। और जिनेन्द्र परमात्मा ने जिसको तिलक किया, वो तिलक को कोई विरोध करे तो भी कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। ये तो होंगे होंगे और होंगे ही, वो तिलक को कोई मिटा सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने तिलक किया है। वो इसकी टेप है, वो बात जो बेंसरी बोले हैं उनके वीडियो टेप है, वो देखिए हमने बम्बई में वो वीडियो टेप बोले थे। क्या कहते हैं कि ऐसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है, सर्व पदार्थ के स्वरूप को जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना ही है। तत्वज्ञान से या कहीं भी ग्रंथों से सर्व पदार्थ को जानने का होता है, अनेक पदार्थों को जानने का होता है, इसका हेतु एक आत्मज्ञान करने का होना चाहिए। अगर ऐसा हेतु नहीं है तो, यदि आत्मज्ञान न हो तो सर्व पदार्थ के ज्ञान की निष्फलता है, ये ज्ञान शून्य है। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ये ज्ञान है वो शून्य है, उस ज्ञान में कोई सफलता नहीं है। आत्मज्ञान सुख को देने वाला है, जिस ज्ञान से सुख की उत्पत्ति न हो वो उस ज्ञान की प्राप्ति करके उस ज्ञान को क्या करना है, इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। प्रयोजन तो जीव को सुख का है, हाँ, यहाँ तो एकात्मवाचक है। सर्व पदार्थ के स्वरूप को जानने का प्रयोजन मात्र एक आत्मज्ञान करना ही है, यहाँ तो यही है हेतु का अर्थ प्रयोजन है। हेतु का अर्थ कारण भी होता है और हेतु का अर्थ प्रयोजन भी होता है, हेतु का अर्थ निमित्त भी कभी होता है, निमित्त को भी हेतु कहते हैं। यदि आत्मज्ञान न हो, बहुत ज्ञान किया, दुनिया भर के ग्रंथों को पढ़ा, बहुत ज्ञान किया और आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो ज्ञान निष्फल है, उस ज्ञान की कोई सफलता नहीं है। जितना आत्मज्ञान होता है उतनी आत्मसमाधि प्रकट होती है। जितना आत्मज्ञान मतलब क्या है कि आत्मज्ञान में जितनी शुद्धि होती है उतना समाधि होती है। आत्मज्ञान किसी को आधा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, वो बात नहीं है। इधर बात तो उतनी है कि जितना आत्मज्ञान मैंने, आत्मज्ञान से जितनी शुद्धि हुई उतनी समाधि है, उतनी आत्म समाधि प्रकट होती है। और जितनी आत्म समाधि प्रकट होती है उतना सुख मिलता है। किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति हो जाए तो उससे मोक्ष विशेष दूर नहीं है। ये जो वचनामृत है ये मोक्ष जीव के लिए बहुत प्रेरणादायी है, यानी प्रोत्साहन देने वाला है। ये वचनामृत कुछ गूढ़ भाषा में लिखा हुआ है, खुली भाषा में नहीं लिखा है, किंतु गूढ़ भाषा में लिखा हुआ है। किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके, तथारूप योग माने क्या, तथारूप योग माने अंतर्भेद जागृति होवे ऐसा योग, उसको तथारूप योग कहते हैं। तो पहले ये समझे कि अंतर्भेद जागृति क्या चीज होती है, उसके अस्ति से और नास्ति से दो प्रकार के अर्थ होते हैं। नास्ति से वो बात है कि अंतर भेदाय करके, अंतर का भेद मैंने छेद करके जागृति आना है, वो कैसे होती है कि सभी संसारी जीवों को एक संसार की अंतर परिणति चलती है, जिस परिणति के वशात वो आत्म जागृति में नहीं आता है। समझता है, जानता है, बात को नहीं समझता है वो बात नहीं है, लेकिन अंदर में जागृति नहीं आ सकती है। वो भी समझता है कि अंदर में जागृति नहीं आती है तो आत्मकल्याण नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो अंतर परिणति है वो इतनी जम गई है मलिनता से कि जागृति आने नहीं देती। तो अंतर भेदाय जाए, यानी अंतरंग भेदाय जाए, इस प्रकार की जागृति आना, उसको भी अंतर जागृति कहते हैं। एक दूसरा अर्थघटन वो भी हो सकता है कि अंतर के रहस्य को समझ करके जागृति आ जाए। अंतर का रहस्य क्या है कि अगर ये मोक्ष मार्ग की लाइन हाथ में आ गई, मुमुक्षुता में सही यथार्थ मुमुक्षुता आ गई, तो उस जीव को मोक्ष है तो बहुत समीप में है। गुरुदेव इस विषय में ऐसी बात करते थे कि देखो यहां जो प्रवचन आदि चलता है वो ऐसी बात है, अलौकिक बात है, इस संसार में संप्रदाय में आजकल नहीं चल रही है। जैन के जितने भी संप्रदाय है उसमें ये बात नहीं चल रही है, ये तो महाविदे से आई हुई बात है। कहां से आई है? महाविदे से लेकर आए थे वो। तो ये बात ऐसी बात है कि जिसकी पात्रता में वो बात जम गई, रुचि हो गई, उसको अंदर से मोक्ष का भणकारा आना लगेगा। मोक्ष का भणकारा सुनने को आएगा उसको कि अभी मेरा मोक्ष हो जाने वाला है, अब मैं डूबने वाला नहीं, अब मैं तिर जाऊंगा, अवश्य अवश्य मैं तिर जाऊंगा। कारण है, हाँ वो तो उसको खोलते हैं पहले, तो बोले कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हाँ। तो ऐसा जिसको मोक्ष का भणकार आए, ऐसी जागृति आ जाए, ऐसा अंतर रहस्य की महिमा आ जाए, उसको भी अंतर्भेद जागृति कहते हैं। ऐसी अंतर्भेद जागृति कोई ऐसा यथार्थ योग प्राप्त होने से होता है। वो कैसा होता है कि उपादान से जिसको अपने आत्मकल्याण की भावना से सत्पुरुष की खोज हो, जरूरत लगे, क्या स्वरूप प्राप्ति की जिज्ञासा हो, आत्मकल्याण की भावना अंतर से उठी हो और रास्ता नहीं मिलता हो, तो उनको ये पता चल जाता है कि इसके जो तज्ञ है, जानकार है, वहां से ये बात मिलेगी, और जगह से मिल सकती नहीं है, इसका अनुभवी पुरुष चाहिए मुझे। तो सजीवन मूर्ति तो उसको एक तथारूप योग कहने में आता है। तथारूप मैंने दोनों साइड से कहीं भी कसर नहीं रहे, वो जीवंतर भी जागृति में आ जाए, उसको मोक्ष का भणकार अंदर से आ जाएगा। और जिसको अंदर से मोक्ष का भणकार आया वो एक इतना अच्छा लक्षण है, ये योग्यता का पात्रता का बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ऐसे जीव को मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे जीव को मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है, उसका मोक्ष हो जाएगा, ये बात जरूर है। निमित्त क्या समझा समझाने के लिए चालू भाषा में बोलना पड़ता है, हाँ वो मैंने वो पात्रता के साथ मेल खा जाना है, उसको ही नियोग कहते हैं। तो उनकी पात्रता भी पक गई और उनको सत्पुरुष भी मिल गए,
आत्मा देने वाले मिल गए,
तो उनको आत्मा देने वाले मिल गए, उनको आत्मा चाहिए था और आत्मा देने वाले भी मिल गए। कोई पैसे का दान देता है, तन मन धन का समर्पण करता है ना, ये तो आत्मा का दान देने वाले मिले। ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन। तो क्या कोई किसी को आत्मा को देता है क्या है? जिसको मिला उसको ऐसा लगता है कि मुझे मुझको दिया
है?
था तो अनंत काल से था अंदर में,
देने वाला नहीं मिला,
लेकिन देने वाला नहीं मिला था, उसको उसकी चेत जीत दे दी, बोले कि नहीं उसने हमको सर्वस्व दे दिया, ये सर्वस्व के देने वाले श्री गुरुदेव। सुगानी जी ने क्या लिखा पत्र में, सर्वस्व को देने वाले श्री गुरुदेव, ऐसा लिखा है, सर्वस्व दे दिया, कोई कसर रखी नहीं, नहीं। ये बहुत गुड बात किया है इधर, किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके, प्राप्त करने में योग्यता भी प्राप्त करने की चीज हो गई और सत्पुरुष की आवश्यकता लगी और सत्पुरुष मिला,
वही योग्यता
है,
सत्पुरुष की आवश्यकता ही योग्यता
है, हाँ वही योग्यता, इसकी आवश्यकता लगे और मिले, संयोग हो जाए, तब तो कहते हैं कि तथारूप योग की प्राप्ति हो गई।
आवश्यकता लगी और मिले नहीं ऐसा बन सकता है? आवश्यकता लगी और मिले नहीं ऐसा बना कभी?
नहीं ऐसा नहीं बनेगा, इसमें तो कुदरत बंधी हुई है, जिसको आवश्यकता लगे और उसको सत्पुरुष नहीं मिले ऐसा कभी विश्व में बनता नहीं है, बनता ही नहीं है। उतना होता है कि जहां तक भावना में कसर रहती है उतनी देर लगती है, भावना तो भावना है लेकिन भावना की डिग्री ज्यादा कम होती है, पर्याप्त मात्रा में भावना हुई और उसको सत्पुरुष न मिला हो ऐसा कभी बनता नहीं है जगत में, उसको मिल ही जाता है, नहीं मिले ऐसा नहीं बनता, क्यों कि कुदरत की देन है, कुदरत इसके साथ बंधी हुई है। मानो कि कोई ऐसा काल हो, मान लो कि कोई ऐसा काल हो कि जिस क्षेत्र में सत्पुरुष की विद्यमानता ही न हो, फिर कहां से मिलेगा कितनी भी भावना हो तो? एक तर्क उठाते हैं तो क्या है कि वो सत्पुरुष के वियोग में इसका प्राण छूट जाएगा, क्या होगा, इसका प्राण छूट जाएगा और तत्क्षण वो सत्पुरुष के चरण में जाकर के पड़ेगा, ये कुदरत की व्यवस्था। बाकी जो सुगानी जी का हाल हुआ वो हाल होता है, उनकी पात्रता पक गई तो आत्मधर्म पहुंच गया, वहां किसी को मालूम नहीं था कि कितने पात्र हैं, लेकिन आत्मधर्म पहुंचा सोनगढ़ आ गए। उनको तो मालूम नहीं था कि गुरुदेव कौन है, कहाँ विराजते हैं, कैसे हैं। उनको तो गुजरात देखा भी नहीं था कभी, सोनगढ़ क्या गुजरात भी नहीं आए थे कभी, गुजराती भाषा भी नहीं जानते थे। न गुजराती भाषा की तकलीफ हुई, न कोई बात की तकलीफ हुई। अनंत काल का छेद करने का काम कर लिया, एक ही दिन में कर लिया।
कैसी जरूरत थी अर्घ चढ़ाना, अर्घ चढ़ाना जरूरत का सूचक है। आपने धर्म को अर्घ चढ़ाया, जरूरत का सूचक है, कितनी जरूरत थी।
जब आत्मधर्म मिले तो गुरुदेव के जो चित्र था उसको अर्घ चढ़ाया था। चित्र को अर्घ चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना, चलो शांति भाई। हमारे दिगंबर परंपरा में ऐसा नहीं है, साक्षात को चढ़ाने के ना बोलते हैं, यहाँ तो के चित्र को भी चढ़ाया। चढ़ाते हैं, उसमें चढ़ाने वाले को कोई अपराध होता
नहीं है।
अपराध तो होता नहीं, उसका दर्शन वो कट जाता है, ये बात होती है। सत्पुरुष की महिमा आई, वही सत्पुरुष कोई दर्शन मुख को काटने का परिणाम है। हाँ, वो खोजते थे, खोजते खोजते वो वृद्धावस्था में आ गए थे। जब उन्होंने कुछ प्रशंसा सुनी तो उनको कुछ लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मोर भी गए तो चमत्कारिक बात हो गया। उन्होंने नाम से पुकारा, आओ आओ सुभाग भाई। फिर वो पर्चा निकाल करके दिया, जो लेके आए थे वही निकाल करके दिया, खत्म हो गया बात। इनकी कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, मेरे मन की बात तो वो पहले से जानते हैं। इसके चरण में वो लेट गए, एकदम इसके चरण में लेट गए। उस साल वो 23 साल के लड़के थे, आजकल 23 साल का तो लड़का बोला जाता है। वो 23 साल की उम्र में थे, और सुभाग भाई 67 साल के वृद्ध पुरुष थे, इनके चरण में लेट गए। और उसने भगवान के रूप में देखा उसको, किस रूप में देखा, ये मेरे भगवान है, मेरे तारणहार है, कोई मुझे तारने वाले हैं। तो उनका भी निवेड़ा हो गया, वो भी अनंत काल का काम करके गए। ऐसा लाभ होता है, इसका मूल्यांकन किस चीज से किया जाए, इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई जगत में उपमा है नहीं, कोई पदार्थ भी है नहीं कि जिसकी उपमा दी जाए। रहस्य हृदय भेदाय त्यारे निर्मलता वधे खरी। हाँ, वो तो है, आत्मभेद अंतर्भेद जागृति आवे, हृदय भेदा जाए तो निर्मलता तो आएगी आएगी। मुमुक्षु की भूमिका तो उसकी अवश्य निर्मलता आई जाएगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। हाँ देखो, मुंबई से लिखा है। हाँ, बाहर में ऐसी बात थी, अंदर में आत्मा में विराजते थे। मुंबई में नहीं, लेकिन अंदर में तो आत्मा में विराजते हैं। लिखते हैं कि ये जगत की लीला बैठे बैठे मुफ्त में देखते हैं। हमको न राग होता है न द्वेष होता है, हम तो मुफ्त में देखते हैं, कोई कीमत चुकाते नहीं है। क्या लिखा, कि किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके कोई जीव एक क्षण भी अंतर जागृति में आ जाए, एक क्षण के बाद फिर दशा बिगड़ जाए वो बात नहीं है, फिर इसकी दशा बढ़ती जाएगी। एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति में आ जाएगा तो उस जीव के लिए मोक्ष ज्यादा दूर, विशेष दूर मैंने ज्यादा दूर नहीं है, बहुत तो अल्पकाल में इसका मोक्ष होने वाला है। उसका आत्मा इसकी भविष्य की मोक्ष दशा की गवाही देता है, उसको आत्म साक्षी कहने में आता है, आत्मा के वो साक्षी मिलती है। ऐसी अलौकिक बातें ये सत्पुरुषों के वचनों में होती है, जिसका जो उसको लाभ हो गया उसका तो काम हो जाएगा। यहाँ तक रखें।